मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए यूरेनियम की 20% अफजूदगी जारी रहेगी, महकमा एटमी तवानाई के सरबराह का ऐलान। पाकिस्तान के इलाके गिलगित में 7वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा, खाने पीने और बुनियादी जरूरत की अशिया की शदीद किल्लत। मिस्र के इनकलाब को सबोताज करने की साजिश, माजूल डिक्टेटर के दस्तेराज उमर सुलेमान सदारती उम्मीदवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबरनामे के साथ असफर कासमी हाजिर खिदमत है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sehertv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है khabrein@sehertv.ir। लीजिए अब आप तफसील के साथ खबरें, मुलाहिजा फरमाइए। इस्लामी जमहूरी ईरान के नायब सदर और एटमी तवानाई के इदारे के सरबराह डॉक्टर फरीदून अब्बासी ने कहा है कि 20% के ग्रेड तक यूरेनियम की अफजूदगी दाखिली जरूरतों के मद्देनजर रखते हुए अंजाम दी जा रही है। डॉक्टर अब्बासी ने ईरान में 20% के ग्रेड तक अफजूदा यूरेनियम की पैदावार के बारे में बताया कि दाखिली जरूरत के मद्देनजर यह अमल अंजाम दिया जा रहा है और जब मतलूबा मकदार में ईंधन तैयार हो जाएगा तो 3.5% के ग्रेड की अफजूदगी दोबारा शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टर अब्बासी ने कहा कि ईरान अब पीछे की जानिब लौटने वाला नहीं है कि 20% के ग्रेड का यूरेनियम दूसरे मुल्कों से खरीदे, क्योंकि हमने सरमायाकारी करके इसकी प्रोडक्शन बेल्ट तैयार कर ली है। उन्होंने बुशहर एटमी बिजली घर के बारे में बताया कि इस बिजली घर ने गुज़श्ता साल कामयाबी के साथ काम करना शुरू कर दिया, उसके मुख्तलिफ मराहिल के टेस्ट का अमल पूरा हुआ। फरीदून अब्बासी ने कहा कि इस वक्त बुशहर बिजली घर अपनी गुंजाइश की 75% बिजली तैयार कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही 1000 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर दिफा ने कहा है कि खलीज फारस में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का मंसूबा पूरी तरह अमरीकी और इसराइली मंसूबा है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने पीर के रोज जनरल अली सयाद शिराजी की शहादत की 13वीं बरसी के मौके पर कहा कि बाज अरब ममालिक ने खलीज फारस के इलाके में जो मिसाइल शील्ड नस्ब करने की बात की है तो यह पूरी तरह अमरीकी और इसराइली मंसूबा है और तेहरान अपने दोस्तों को मशवरा देगा कि इस मंसूबे में शामिल होने से गुरेज करें। वजीर दिफा अहमद वहीदी ने कहा कि इस तरह के मंसूबों से सिक्योरिटी का यकीनी बनना दरकिनार, उल्टा सिक्योरिटी खतरात पैदा होते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अलुस्मा सैयद अली खामेनेई के दिफाई उमूर के मुशीर आला सैयद याहिया रहीम सफवी ने तुर्की में नस्ब किए जाने वाले अमरीकी मिजाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सिलसिले में मरहलावार स्ट्रेटेजी तुर्की से शुरू हुई है जो इराक और खलीज फारस तक जाएगी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल अमेरिका से $30 अरब के हथियार खरीदे। उन्होंने कहा कि इलाके में अमेरिका की कई फौजी छावनियां हैं जिनके अखराजात अरब ममालिक से वसूल किए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी मंसूबे का बुनियादी मकसद इसराइल को तहफ़ुज़ देना है और अमरीका के हर सदर के एजेंडे में कुद्स की गासिब से उनकी हुकूमत का तहफ्फुज शामिल होता है। तुर्की में अमरीका के एंटी मिसाइल सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की के नौजवानों की यूनियन के अराकीन ने गैर मुतवक्के तौर पर उस होटल पर हल्ला बोल दिया जो नेटो के एंटी मिसाइल सिस्टम की तनसीबात में तैनात अमरीकी फौजियों की क्यामगाह है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस यूनियन के अराकीन ने होटल में दाखिल होने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें होटल में दाखिल होने से रोक दिया। होटल में दाखिल होने की इजाजत न मिलने पर तुर्क नौजवानों ने होटल के सामने इज्तिमा किया। यूनियन के सदर एल्कर यूजल ने इज्तिमा से खिताब में कहा कि तुर्की की आवाम अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजियों की मौजूदगी के मुखालिफ है और अमरीकी फौजियों को यहां से जाना होगा। पाकिस्तान के इलाके गिलगित में कर्फ्यू 7वें रोज भी जारी रहा। पाकिस्तानी ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित में 7 दिन से जारी कर्फ्यू के नतीजे में खाने पीने की चीजों की शदीद किल्लत हो गई है। इस दरमियान कर्फ्यू में सिर्फ जुमे को 2 घंटे की नरमी की गई थी, जिसके बाद से कर्फ्यू में कोई वक्फा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी भी बरकरार है। रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंद दहशत गर्दों ने 4 दिन कबल मुख्तलिफ मुसाफिर बसें रोक के जिन तकरीबन 200 अफराद को अगवा कर लिया था, उनमें से चंद अफराद की लाशें दस्तियाब हुई हैं और बकी अफराद के अंजाम के बारे में कोई इत्तला नहीं है। गिलगित के शिया रहनुमाओं के मुताबिक तालिबान दहशतगर्दों ने जिन लोगों को अगवा करके कत्ल किया है, उनकी लाशों की भी बेहुरमती की है और कई लाशें मस्कशुदा हालत में मिली हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने सदर जरदारी के दौरे हिंदुस्तान को कामयाब करार दिया है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इस दौरे को खास अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि फरीकैन ने एटमी मसले और कश्मीर के इशू पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पीर के रोज शहर लाहौर में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमसाए ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात, इलाकाई तआवुन के उमूर में हम आहंगी की बाबत इत्मीनान का बायस बनते हैं, जबकि हिंदुस्तानी वजीर आजम के आइंदा दौरा पाकिस्तान से इस्लामाबाद और नई दिल्ली के ताल्लुकात को तकवीयत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन वफूद के तबादले से बाहमी ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंच सकते हैं। चुनाचे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के स्पीकर का हालिया दौरा पाकिस्तान भी बहुत समरबख्श साबित हुआ। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान को तिजारत में मोस्ट फेवरेट मुल्क का दर्जा दिए जाने के बारे में कहा कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली के माबैन तिजारती ताल्लुकात के फरोग से दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत इस्लामी जमहूरी ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और चीन से तिजारत को फरोग देकर इलाकाई अमनो आश्ती को तकवीयत पहुंचाना चाहती है। हिंदुस्तान की रियासत गुजरात की एक अदालत ने 2002 के मुस्लिम कुश फसादात के एक वाके में 23 अफराद को मुजरिम करार दिया है। नई दिल्ली से शिनहुआ की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की एक खसूसी अदालत ने पीर के दिन गोधरा के शहर ओडे में 1 अप्रैल 2002 को मुसलमानों के वहशियाना कतलेआम के मुकदमे में 23 अफराद को मुजरिम करार दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन मुजरिमीन की सजाओं का ऐलान 16 अप्रैल को किया जाएगा। अदालत ने इसी के साथ 23 दीगर अफराद को इल्जामात से बरी कर दिया है। काबिल जिक्र है कि ओडे का कतलेआम गुजरात के मुस्लिम कुश फसादात के उन 9 बड़े वाकयात में से एक है जिनके बारे में हिंदुस्तान की अदालत उस्मा ने तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील दी है। मुसलमानों के कतलेआम के इस वाकये में कुल 47 अफराद पर मुकदमा चलाया गया। मिस्र के सरदारती इलेक्शन में साबिक डिक्टेटर हुस्नी मुबारक के दस्ते रास्त उमर सुलेमान के उम्मीदवार बनने के बाद इनकलाबी कुवतों ने खबरदार किया है कि इनकलाब को सबोताश करने की साजिश पर अमल हो रहा है। मिस्र के सदारती इलेक्शन में माजूल डिक्टेटर हुस्नी मुबारक के दस्तेरास उमर सुलेमान की जानिब से बतौर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद इनकलाबी नौजवानों और दीगर इनकलाबी कुवतों ने खबरदार किया है कि इनकलाब मिस्र को सबोताज करने की खुफिया साजिश पर अमल हो रहा है। मिस्र के सदारती इलेक्शन में अरब लीग के सबक सेक्रेटरी जनरल अमर मूसा, इखवानुल मुस्लिमीन के एक सबक अहदेदार अब्दुल मुनिम अबुल फतूह, नासिरी पार्टी के रहनुमा हमदैन असबाही, साबिक वजीर आजम अहमद शफीक और इखवान मुस्लिमीन के उम्मीदवार खैरत शातिर बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। अब साबिक डिक्टेटर हुकूमत की बाकियात की कोशिशों, बिलखसूस उमर सुलेमान की जानिब से बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने के ऐलान से इनकलाबी कुवतों को यह तश्वीश लाहक हो गई है कि साबिक डिक्टेटर हुकूमत को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इख्वानुल मुस्लिमीन के सदारती उम्मीदवार खैरत शातिर ने मिस्र की इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह उमर सुलेमान की जानिब से सदारती इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने को इनकलाब की तौहीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि सदारती इलेक्शन के लिए उमर सुलेमान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराना इनकलाब की तौहीन है और मुल्क में एक और इनकलाब का बाइस होगा। काबिले जिक्र है कि मिस्र के माजूल डिक्टेटर हुस्नी मुबारक ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में उमर सुलेमान को अपना नायब मुकर्रर किया था।
اخوان المسلمین کے ایک رہنما محمد سعد علیوا نے کہا کہ عمر سلیمان کے صدارتی امیدوار بننے سے حسنی مبارک کی ڈکٹیٹر حکومت کو باقی رکھنے کی سازش آشکارا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر سلیمان عوام کے خلاف سابق ڈکٹیٹر حکومت کے تمام مظالم میں شریک رہے ہیں۔ مصر کی الوفد پارٹی کے نائب صدر احمد عز العرب نے بھی کہا کہ عمر سلیمان سابق استبدادی حکومت کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس نے ملک کے علاقائی کردار اور اس کے تمام توانائیوں اور وسائل کو برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر سلیمان مبارک حکومت کے تمام جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمر سلیمان تھے جنہوں نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں مصر کی گیس کی فروخت کے معاہدے کو آخری شکل دی اور فلسطینیوں کے لیے بہت سی مصیبتوں کے اسباب فراہم کیے۔ عمر سلیمان نے ایسی حالت میں صدارتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں کہ ان کے خلاف صہیونی حکومت سے قریبی روابط رکھنے، تل ابیب کا مسلسل سفر کرنے، مالی بدعنوانی، صہیونی حکومت کو مصر کی گیس انتہائی سستے داموں بیچنے اور انقلابی تحریک کے دوران مظاہرین کی سرکوبی جیسے سنگین الزامات ہیں۔ عمر سلیمان کی جانب سے صدارتی الیکشن میں بطور امیدوار حصہ لینے کے اعلان کے بعد عوام نے قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر اجتماع کر کے ان کی مخالفت کا اعلان کیا اور کہا کہ عمر سلیمان پر اس کے جرائم پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ پریس ٹی وی کے مطابق مصر کے عوام عمر سلیمان کے صدارتی امیدوار بننے کو، جو معزول ڈکٹیٹر کی حکومت کے انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، انقلاب کو سبوتاج کرنے اور سابق ڈکٹیٹر حکومت کو دوبارہ برسر اقتدار لانے کی کوشش سمجھتے ہیں۔ عمر سلیمان نے پہلے اعلان کیا تھا کہ صدارتی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن اب انہوں نے بطور امیدوار حصہ لینے کا اعلان کیا ہے اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکمراں فوجی کونسل ان کی پشت پر ہے۔
بحرین میں 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے بھوک ہڑتال کے نتیجے میں سیاسی کارکن عبدالحادی خواجہ کی حالت نازک ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی رہائی کے لیے عوام کے مظاہرے وسیع تر ہو گئے ہیں۔
بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے عقوبت خانے میں قید سیاسی کارکن عبدالحادی الخواجہ سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام کے مظاہروں میں وسعت آ گئی ہے۔ بحرینی شہریوں نے مناما، اس کے اطراف کے علاقوں اور جزیرہ سترہ میں مظاہرے کر کے الخواجہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، جو پچھلے 2 مہینے سے جیل میں بھوک ہڑتال پر ہیں۔ بحرینی مظاہرین کے ہاتھوں میں قومی پرچم اور الخواجہ کی تصاویر تھیں اور وہ آل خلیفہ حکومت کی سرنگونی کے نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین نے بحرین کو سعودی فوجیوں کے ہاتھوں مقبوضہ علاقہ قرار دیا اور قابض فوجیوں کے فوری انخلاء کی ضرورت پر زور دیا۔ مظاہرین نے عبدالحادی الخواجہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ہفتہ الخواجہ منانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ عبدالحادی الخواجہ نے جیل میں ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے جس کی پورے ملک میں تعریف کی جا رہی ہے، اور عوام اس سیاسی کارکن کی رہائی کے لیے مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب عالمی قانونی اداروں نے بحرین کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیاسی اور شہری قوانین کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے، جن میں مذہبی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، اجتماعات کی آزادی کے ساتھ ہی انتخابات اور منصفانہ عدالتی کارروائی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ عبدالحادی الخواجہ کو دیگر سیاسی کارکنوں کے ہمراہ آل خلیفہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف 8 فروری 2012 سے انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر رکھی ہے اور گزشتہ جمعے کو ان کی جسمانی حالت انتہائی خراب ہو جانے کے باعث انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ بحرین میں 14 فروری 2011 سے شاہی حکومت کے خلاف عوام انقلاب جاری ہے۔ مظاہرین پر بحرینی اور سعودی فوجیوں کے حملوں میں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے کارکنوں نے ملکہ برطانیہ کی سلطنت کے 60 سالہ جشن میں شاہ بحرین کی شرکت کی مخالفت کی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے شیخ حمد بن عیسیٰ علیہ خلیفہ کو بحرین میں سعودی فوجیوں کے ہاتھوں عوام کے بہیمانہ قتل اور سرکوبی کا ذمہ دار قرار دیا۔ برطانیہ کی حکومت بحرین کے آل خلیفہ حکومت کی ایسے وقت حمایت کر رہی ہے کہ جب برطانیہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی علم برداری کے دعوے کرتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں برطانیہ، امریکہ اور بعض دیگر ممالک جو انسانی حقوق کے بڑے دعوے دار ہیں، در حقیقت انسانی حقوق کے مسئلے کو حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، ہر وہ ملک جو امریکہ اور برطانیہ کی مرضی کی پالیسیاں اختیار کرتا ہے، اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ملک امریکہ کی اطاعت سے روگردانی کرے تو اس کے ہر عمل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جاتا ہے۔
جنوبی یمن کے ابین علاقے میں مسلح افراد کے حملوں میں مارے جانے والوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ پیر کے روز مبینہ طور پر القاعدہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے صوبہ ابین کے لودر نامی علاقے کی فوجی چھاؤنی پر حملہ کیا، जिसमें 17 अफराद मारे गए। मारे जाने वालों में 5 फौजी भी शामिल हैं, जबकि 2 अफराद कबायली और 10 हमलावर हैं। रिपोर्टों के मुताबिक झड़प की जगह से मजीद 6 लाशें मिली हैं जो हमलावरों की हो सकती हैं। यमन में जहां एक तरफ डिक्टेटर हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हुई, वहीं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और खासतौर पर जनूबी इलाकों में झड़पों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बताया जाता है कि ये झड़पें अलकायदा और फौज के माबैन हो रही हैं। इटली में इक्तिसादी और मुआशी बहरान ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है।
इटली की कौमी मजदूर यूनियन ने खबरदार किया है कि सन 2012 में इस मुल्क में बेरोजगारी इज्तिमाई शक्ल अख्तियार कर लेगी। इटली की कौमी मजदूर यूनियन के सरबरा वेंचेंस्टो स्कुडेरा ने कहा कि अगर रोजगार के ताल्लुक से फौरी तौर पर वसी पैमाने पर जरूरी इकदामात न किए गए तो सन 2012 में इज्तिमाई बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि मुल्क को इज्तिमाई बेरोजगारी से बचाने के लिए फौरी तौर पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी के जरिए तेज रफ्तार इकदामात करे। इटली के कौमी इदारे शुमारियात के मुताबिक इटली में इस वक्त 30% से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 2008 से 2011 के दरमियान इक्तिसादी बहरान के नतीजे में 10 लाख से ज्यादा इतालवी नौजवान बेरोजगार हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में इटली में इक्तिसादी बहरान के नतीजे में 62,000 से ज्यादा कंपनियां और कारखाने बंद हुए हैं। इक्तिसादी बहरान के खतरनाक नतायज से सिर्फ इटली के ही अवाम दो चार नहीं है, बल्कि ये बहरान इस वक्त पूरे यूरोप में अवाम के लिए तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। खास तौर पर यूनान, स्पेन और पुर्तगाल इक्तिसादी जमूद का शिकार हैं और दिवालिया होने के करीब पहुंच चुके हैं। यूरोप के सियासतदानों और हुकाम के बरखिलाफ इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि यूरोप के इक्तिसादी बहरान के जल्द खत्म होने का इम्कान नहीं है। इक्तिसादी बहरान के शिकार यूरोपीय मुल्कों में सबसे ज्यादा खराब हालत स्पेन की है, जहां बेरोजगारी की शरह 23% है, जबकि स्पेन के वजीर खजाना ने एतराफ किया है कि 2012 में स्पेन में इक्तिसादी तरक्की में मजीद कमी आएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी।
नाइजीरिया में ईस्टर के मौके पर गिरजाघर के करीब होने वाले कार बम धमाके में 40 अफराद हलाक हुए हैं। हुकाम का कहना है कि धमाका शुमाली कस्बे कदोना में वाके चर्च के करीब हुआ। धमाका इतना शदीद था कि इससे घरों, होटलों की खिड़कियां और छतें उड़ गईं। अभी किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इससे कबल गैर मुल्की सिफारतकारों ने ईसाइयों के अहम त्यौहार के मौके पर हमले का इंतबाह जारी किया था। क्रिसमस के मौके पर भी नाइजीरिया में 4 बम धमाकों में 44 अफराद मारे गए थे। और आखिर में एक बार फिर अहम तरीन खबरों की सुर्खियां। मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए यूरेनियम की 20% अफजूदगी जारी रहेगी, महकमा एटमी तवानाई के सरबराह का ऐलान। पाकिस्तान के इलाके गिलगित में 7वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा, खाने पीने और बुनियादी जरूरत की अशिया की शदीद किल्लत। मिस्र के इनकलाब को सबोताज करने की साजिश, माजूल डिक्टेटर के दस्तेराज उमर सुलेमान सदारती उम्मीदवार। नाजरीन खबरें अपने इख्तिताम को पहुंची। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखिए, पता है urdu.sehtv.ir। इसी के साथ असफर कासमी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।